पृष्ठ संख्या 61, शीर्षक है तीसरा मनोवैज्ञानिक विवेचन। इसके अंतर्गत शीर्षक है धर्म की उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति और विकास विषयक प्रश्न पर हम निम्नलिखित चार आधारों पर विचार कर सकते हैं। बिंदु अ है मानव जीवन के आभ्यांतरिक तत्व जो उसे धार्मिक बनाते हैं। ब है धार्मिकता का उद्देश्य। मानव आदिम काल से आज तक धर्म में संतोष प्राप्त कर रहा है और धार्मिक बना रहना चाहता है। स है धर्म की उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक तत्व। द है धार्मिक भावना के विकास के मनोवैज्ञानिक आधार। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिकता पुरातनता की निरंतरता का एक रूप है। विकास की यही प्रक्रिया होती है। प्राचीन से नवीन का विकास होता है। धर्म की उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक कारणों में विकास की यही प्रक्रिया परिलक्षित होती है। यह स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति और विकास एक साथ रहने वाली प्रक्रिया है। इनकी निरंतरता मनोवैज्ञानिक रूप में सिद्ध होती है। आज का मानव आदिम मानव के ही मन बुद्धि तथा शरीर को धारण करता हुआ चल रहा है। हमारे आधुनिक धार्मिक मूल्य संस्कार प्रवृत्तियां और व्यवहार आदिम धर्म के ही परिमार्जित रूप हैं। विकास के निरंतरता की प्रक्रिया से आज भी आदिम मानव के शारीरिक तथा मानसिक गुण हमारे अंदर वर्तमान हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वे कौन कौन से आभ्यांतरिक तत्व हैं जो मानव को धार्मिक बनाते हैं। इस प्रश्न के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया है। अगला शीर्षक है अ मानव जीवन के आभ्यांतरिक तत्व जो धार्मिक बनाते हैं। इसमें शीर्षक है पहला धार्मिक मूल प्रवृत्ति संबंधी सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य में कुछ मूल प्रवृत्तियां जैसे भूख प्यास नींद काम आदि होती हैं। उन्हीं के कारण वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। धार्मिक व्यवहार भी मनुष्य इसलिए करता है कि उसके अंदर धर्म की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए मनुष्य धार्मिक होता है। पृष्ठ संख्या 62, शीर्षक है आलोचना। पहला है शीर्षक के रूप में अवैज्ञानिक और असंतोषजनक। यद्यपि सामान्य रूप में कहने के लिए यह सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है। यह सिद्धांत यथार्थ समस्या का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता, क्योंकि यदि धार्मिकता की मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो अन्य सभी क्रियाओं और व्यवहारों को भी मूल प्रवृत्तियां मान लिया जा सकता है और मूल प्रवृत्तियां असंख्य मानी जा सकती हैं, जबकि मूल प्रवृत्ति संख्या में सीमित और सहज बताई जाती है। अगला शीर्षक है दूसरा धर्म एक जटिल क्रिया है। मनोवैज्ञानिक बतलाते हैं कि मूल प्रवृत्ति सहज जन्मजात और बिना सीखी हुई प्राकृतिक प्रवृत्ति है और जिसके कारण व्यक्ति किसी विषय या परिस्थिति के प्रति विशिष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत धर्म किसी उत्तेजना के प्रति की जाने वाली सरल प्रतिक्रिया नहीं है। मूल प्रवृत्ति के महान विशेषज्ञ मैकडूगल की ही यह मान्यता है कि धर्म अनेक मूल प्रवृत्तियों के सहयोग से उत्पन्न एक जटिल एवं बहुरंगी या डाइवर्सिफाइड प्रतिक्रिया है। अगला शीर्षक है तीसरा, पुनरुक्ति दोष। यह एक तार्किक दोष है कि हम जिस बात को सिद्ध करना चाहते हैं उसे पहले ही मान लेते हैं। इस दोष को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। इस सिद्धांत में यह दोष वर्तमान है क्योंकि इसके अनुसार मनुष्य धार्मिक इसलिए है कि उसके अंदर धर्म की मूल प्रवृत्ति है। अतः यह सिद्धांत दोषपूर्ण तथा भ्रामक है। अगला शीर्षक है चौथा, अति सरलीकरण। धर्म को मूल प्रवृत्ति मानकर इसकी सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति को आदिम मानव की एक सरल और सहजतम प्रवृत्ति तक के ही रूप में स्वीकार कर लेना उचित नहीं प्रतीत होता। धर्म में तो अनेक संवेगों, भावों और मूल प्रवृत्तियों का समन्यात्मक एवं संगठनात्मक रूप मिलता है। धर्म में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के समन्वय और संगठन को देखकर तो यही लगता है कि मानव के आभ्यांतरिक जगत में एक पिपासा वर्तमान है, एक अस्थायी आवश्यकता है जिसके आधार पर वह आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसे केवल मूल प्रवृत्ति कहकर सरलीकृत कर देना इसके समन्वयात्मक पक्ष की उपेक्षा करनी होगी। अगला शीर्षक है दूसरा, धार्मिक शक्ति संबंधी सिद्धांत। यह सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान पर आधारित है। शक्ति मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं को उनकी शक्तियों से संबंधित करता है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, कल्पना, विचार, अनुभूति, संवेग और संकल्प आदि मन की शक्तियां हैं। इसी आधार पर विचारकों ने धर्म को मानव मन की एक विशिष्ट शक्ति माना है। धर्म शक्ति सिद्धांत के अनुसार धर्म मानव मन की एक विशेष शक्ति है। इसी के कारण मनुष्य धार्मिक है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसके अंतर्गत शीर्षक है पहला, आधुनिक मनोविज्ञान के विरुद्ध है। यह सिद्धांत मनोविज्ञान के प्राचीन शक्ति सिद्धांत पर आधारित है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान यह सिद्ध करता है कि मानव मन एक पूर्ण इकाई है। पृष्ठ संख्या 63। वह मन को परस्पराश्रित प्रक्रियाओं की आंगिक एकता के रूप में स्वीकार करता है। उसमें स्वतंत्र शक्तियाँ पृथक पृथक नहीं रहती। यदि आधुनिक मनोविज्ञान के आंगिक एकता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो धर्म शक्ति सिद्धांत अपने आप अस्वीकृत हो जाता है। धर्म की एक अलग शक्ति नहीं मानी जा सकती और मानव उसके आधार पर धार्मिक नहीं बनता। अगला शीर्षक है दूसरा, यह सिद्धांत अवैज्ञानिक प्रतीत होता है। आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के अनुसार धर्म शक्ति संबंधी सिद्धांत अवैज्ञानिक प्रतीत होता है। यदि मानव का अन्य चेतन व्यवहार मानव मन की आंगिक एकता के आधार पर होता है तो उसका धार्मिक व्यवहार किस तरह अकेला धार्मिक शक्ति के आधार पर माना जा सकता है? यदि ऐसा मानते हैं तो हमारी मान्यता अवैज्ञानिक सिद्ध होती है। अगला शीर्षक है तीसरा, भय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भय का अनुभव ही धर्म की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। प्राचीन समय में यह सिद्धांत एपिक्यूरियन दार्शनिक तथा लैटिन कवि ल्यूक्रिसस के विचारों में मिलता है। इन्होंने धर्म का तादात्म्य अंधविश्वास से किया था। आधुनिक युग में अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम ने ल्यूक्रिसस के विचारों का समर्थन करते हुए इस पर जोर दिया कि धार्मिक क्रियाओं के लिए भय ही एकमात्र प्रेरक तत्व है। कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक जैसे रोबोट ने भय के सिद्धांत का समर्थन किया। यदि आदिम धर्म को देखा जाए तो इसमें संदेह नहीं कि उसमें भय का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। आदिम मानव प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में अद्भुत जीवों की उपस्थिति मानता था और उनके प्रति भय प्रदर्शित करता था। आदिम मानव अशुभ आत्माओं या जीवों से भयभीत होने के कारण ही उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उनको प्रसन्न करने के लिए धार्मिक क्रियाएं, पूजा आराधना आदि करता था। अतः आदिम काल के धर्म में अशुभ आत्माओं के प्रति भय की भावना के कारण ही विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति का कारण भय को माना है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें शीर्षक है पहला, धर्म का कारण भय नहीं श्रद्धायुक्त भय है। धर्म की उत्पत्ति का कारण भय जैसे सरल संवेग को नहीं बताया जा सकता। आदिम धर्म में श्रद्धायुक्त भय निहित है। इसकी संगति भय से नहीं मानी जा सकती। आदिम धर्म में भय का समावेश है, परंतु वह आंशिक रूप में ही है। डॉक्टर मेरठ ने इसका समर्थन करते हुए ठीक ही लिखा है कि श्रद्धायुक्त भय वह नहीं जो कि शुद्ध भय है। आदिम धर्म में शुद्ध भय ही नहीं श्रद्धायुक्त भय का प्रवेश रहता है और साथ ही विस्मय प्रशंसा रुचि श्रद्धा एवं प्रेम का भी स्थान भय से अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि धर्म के विकसित रूप को देखा जाए तो उसमें भय का लोप होकर आदर आकर्षण और प्रेम का स्थान सर्वोपरि हो जाता है। यदि आदिम धर्म को भी देखा जाए तो उसमें भी भय के अतिरिक्त विश्वास तथा आशा के तत्व वर्तमान रहते हैं। यही तत्व आगे चलकर प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। अतः आदिम धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या केवल भय के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। अगला शीर्षक है दूसरा, मैकडूगल के सिद्धांत से भय के सिद्धांत का खंडन। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल का सिद्धांत है कि भय में पलायन की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति भयदायक वस्तु से भय के कारण पलायन कर जाता है। यदि धर्म में भय ही मुख्य संवेग है तो आदिम मानव जिसके प्रति धार्मिक क्रिया करता था उससे वह पलायन करता, न कि उसके प्रति श्रद्धा आदर और विश्वास प्रकट करता। पृष्ठ संख्या 64। श्रद्धायुक्त भय को भागने की प्रवृत्ति के साथ नहीं जोड़ सकते। आदिम मानव की धार्मिक मनस्थिति में दो विरोधी बातें पाई जाती हैं। एक ओर तो आदिम मानव दैवी भय के कारण अपने आराध्य से विमुख होना चाहता है और दूसरी ओर आश्चर्य, कृतज्ञता तथा प्रेम और श्रद्धा के कारण आकर्षित होता है। इस प्रकार धर्म एक सांवेगिक तनाव की स्थिति है। आदिम मानव में भय का प्रभाव अधिक था और इसका कारण, जैसा कि प्रोफेसर ल्यूबा ने कहा है, कि संवेगों में भय ही आदिम मानव के संगठन और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। फिर भी जिस प्रकार भय का प्रभाव व्यापक था और आदिम मानव की आंतरिक मनस्थिति में स्वाभाविक अंग के रूप में था, उसी प्रकार साथ ही साथ भय के समान ही आशा, प्रेम, कृतज्ञता और श्रद्धा आदि के भाव भी उसके स्वाभाविक अंग के रूप में थे। अतः केवल भय को ही धर्म की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता। अगला शीर्षक है तीसरा, धर्म की उत्पत्ति भय से नहीं आत्मीयता के भाव से होती है। W. रॉबर्टसन स्मिथ ने भय के सिद्धांत का खंडन करते हुए इस मत का बड़ा बलपूर्वक समर्थन किया है कि धर्म की उत्पत्ति भय से नहीं आत्मीयता के भाव के कारण हुई है। आदिम मानव कुछ शक्तियों के प्रति आकर्षित होता था। ये शक्तियाँ उसके लिए उपकारी सिद्ध होती थीं। इस उपकार के प्रति ही आदिम मानव आकर्षित हुआ और भय की अपेक्षा उसके अंदर शक्ति विशेष के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास प्रकट हुआ। इसलिए वह उसकी पूजा, आराधना और अर्चना भी करने लगा। इसका उदाहरण टोटमवाद तथा प्रेम सिद्धांत में मिलता है। इन दोनों में आत्मीयता का ही भाव प्रदर्शित होता है। स्मिथ के उपयुक्त तत्वों के प्रति आक्षेप करते हुए धर्म दार्शनिक DM एडवर्ड ने कहा है कि स्मिथ का कथन आवश्यकता से अधिक भय सिद्धांत का विरोध करता है। यह माना जा सकता है कि भय की भावना का लोप नहीं हो जाता। यह तो कहा ही जा सकता है कि आदिम धर्म में भय की भावना का आधिक्य मिलता है। यही नहीं, विभिन्न धर्मों में भी भय की प्रधानता दिखाई गई है। हिंदू अथवा ईसाई धर्मों में भी श्रद्धायुक्त भय की चर्चा मिलती है। अगला शीर्षक है निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचनों से यही निष्कर्ष मिलता है कि धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या धर्म की मूल प्रवृत्ति, शक्ति सिद्धांत और भय के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। धार्मिक अनुभूति अनेक मानसिक तत्वों के समूह को नहीं माना जा सकता। किसी एक संवेग को भी धर्म की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता। धार्मिक अनुभूति वास्तव में एक संगठित इकाई के रूप में प्रतीत होती है। धर्म की उत्पत्ति के कारणों को मानव बुद्धि की किसी शक्ति में भी नहीं ढूंढा जा सकता। इसका उत्तर पाने के लिए आवश्यक है कि धार्मिक चेतना में प्रवेश किया जाए। इसके लिए हमें इसका पता लगाना होगा कि धार्मिक चेतना क्यों है, इसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ, अर्थात धार्मिकता का क्या उद्देश्य है। अब अगला शीर्षक है बिंदु ब, धार्मिकता का उद्देश्य। इसके अंतर्गत शीर्षक है क्यों मानव आदिकाल से आज तक धर्म में संतोष प्राप्त कर रहा है और धार्मिक बना रहना चाहता है। इस प्रसंग में संरचनावादी और गत्यात्मक मनोविज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 65। चेतना के अध्ययन में दोनों की उपादेयता सिद्ध होती है, परंतु संरचनात्मक मनोविज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक अथवा गत्यात्मक मनोविज्ञान से अधिक सहायता मिलती है, क्योंकि संरचनात्मक मनोविज्ञान चेतना की समग्रता को खंडित करके अध्ययन करता है, जिससे सत्य की पूर्णतया ज्ञान नहीं प्राप्त होता। गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना का खंडन करके अध्ययन नहीं करता, अर्थात इसमें चेतना को ज्ञान, इच्छा और भाव में नहीं विभाजित किया जाता। यह चेतना का संगठनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। इसके अनुसार चेतना का अध्ययन उद्देश्य परक होता है। इस दृष्टि से गत्यात्मक या क्रियात्मक मनोविज्ञान की विधि धार्मिक चेतना के अध्ययन में अपरिहार्य प्रतीत होती है। इसी आधार पर धार्मिक चेतना के विषय में यह प्रश्न किया जा सकता है कि धार्मिक चेतना का उद्देश्य क्या है, यह क्या चाहती है, इसे किन मूल्यों की प्राप्ति करनी है। मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था पर दृष्टिपात करने से तो यही पता चलता है कि धर्म की उत्पत्ति अतींद्रिय शक्तियों से प्रभावित होने के कारण ही हुई है। इस पहली अवस्था में बुद्धि की अपेक्षा संवेगों और भावनाओं की प्रचुरता दृष्टिगत होती है। हमने यह देखा कि आदिम मानव प्रारंभ में माना नामक अतींद्रिय शक्ति में विश्वास रखता था और उससे अपने जीवन के संघर्षों में सफलता की आशा करता था, तथा उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अनेकानेक क्रिया विज्ञान, पूजा, प्रार्थना आदि करता था। निसंदेह उसी समय से आदिम मानव धर्म की ओर अग्रसर हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि धर्म की उत्पत्ति के पीछे मनुष्य की मूल प्रेरणाएं ही मूल हैं। इन मूल प्रेरणाओं में जीवन रक्षा तथा सुख एवं समृद्धि मुख्य है। वह अनेक प्राकृतिक प्रकोपों तथा मृत्यु भय से ग्रस्त होने के कारण ही माना नामक चमत्कारी तथा अद्भुत शक्ति में आस्था रखता था और इसीलिए पूजा तथा प्रार्थना करके उस शक्ति को प्रसन्न भी करता था, तथा अपने जीवन के कार्यों में सफलता की इच्छा भी करता था। धार्मिक क्रियाकलापों में मानव की यही प्रेरणाएं काम करती प्रतीत होती हैं। आज भी धार्मिक व्यवहार और विश्वास के पीछे मानव की यही भावना काम करती है, अर्थात धर्म में पूर्णता और संपन्नता की वृत्ति ही मूल है। उदाहरण के रूप में यदि देखें तो संसार के सभी जीवित धर्मों में मानव की यही भावना काम करती है। पूर्णता की प्राप्ति अथवा असीम तथा अनंत की प्राप्ति ही धर्म की मूल प्रेरक शक्ति है। हिंदू धर्म में मोक्ष और बौद्ध धर्म के निर्वाण की धारणा में जीवन की अमरता, अनंतता तथा असीमितता ही प्रकट होती है। अगला शीर्षक है उपरोक्त धारणा के प्रति आक्षेप। उपरोक्त धारणा से यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील रहा है। उसकी जीने की इच्छा ही मूल प्रेरक प्रवृत्ति है। यदि यही बात सत्य है तो जीने की इच्छा तो केवल जैविक है। स्पष्टतः इसको किसी भी अर्थ में धार्मिक नहीं कह सकते। यह तो एक सामान्य मूल प्रेरक शक्ति है। संपूर्ण मानव जीवन इससे परिचालित होता है, न कि केवल धार्मिक जीवन ही। यही नहीं, इस प्रेरक शक्ति से ही पशु जीवन भी सक्रिय है। परंतु पशुओं में तो धार्मिकता नहीं दृष्टिगत होती। तो क्या धर्म जैविक आवश्यकता से अधिक और कुछ नहीं है? शीर्षक है आक्षेप के उत्तर। इसमें पहला है, धार्मिक चेतना केवल जैविक नहीं है। मानव की धार्मिक चेतना को केवल जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। मानव जीवन के लिए जैविक आधार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मानसिक अथवा आत्मिक आधार। पृष्ठ संख्या 66। मनुष्य के विकास में दोनों का महत्व स्वीकार करना होगा। जैविक आवश्यकताओं की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन के लिए मूल के रूप में स्वीकार की जा सकती है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि जड़ का उतना महत्व नहीं जितना कि फूल का, क्योंकि वास्तविकता का पता जड़ या बीज से उतना नहीं लगता जितना कि फूल या फल से लगता है। धार्मिक चेतना को जैविकता के साथ जोड़ने पर आत्मिकता से भेद नहीं होता, और न तो जैविकता का महत्व ही बढ़ जाता है। महत्व के दृष्टि से दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई भेद संभव नहीं है। जैविकता के संबंध होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक चेतना केवल जैविक है। वास्तव में धर्म या धार्मिक चेतना मानव जीवन में अनुस्यूत है, कोई बाह्य रूप में थोपी हुई वस्तु नहीं है। अगला शीर्षक है दूसरा, धार्मिक चेतना का उदय मूल्यों की प्राप्ति के लिए होता है। धार्मिक चेतना केवल जैविक इसलिए भी नहीं ज्ञात होती कि मनुष्य की कभी भी न तृप्त होने वाली प्यास जीवन की अन्य अनुभूतियों की अपेक्षा धार्मिक अनुभूतियों से तृप्त होती है। मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता और संतुष्टि अन्य व्यवहारों की अपेक्षा धार्मिक व्यवहार में ही पाता है। वह धर्म ही है जो मानव जीवन को शारीरिक अथवा जैविक धरातल से ऊपर उठाता है। धर्म मनुष्य को जीने की इच्छा और अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करने की स्थिति से ऊंचा उठाकर संतोष की प्राप्ति कराता है। यह संतोष मूल्यों की प्राप्ति में होता है। ये मूल्य हैं सत्य, शुभ एवं सुंदर, यही मानव का उच्चतर जीवन होता है। वह जीवन ही वास्तविक जीवन होता है। आत्म साक्षात्कार और विजय का जीवन कहा जा सकता है। यह सत्य है कि आदिम मानव में उच्चतर जीवन के ये सभी लक्ष्य सुप्ता अवस्था में थे और वहीं विकास की प्रक्रिया के साथ स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। प्राथमिक अवस्था में यह जीवन संघर्षों के विजय के रूप में कार्य करता था। भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति में इसका उपयोग किया जाता था, परंतु बाद में यह वासनात्मक जीवन की संतुष्टि के अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन के सुख और शांति को प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। उसी सुप्त धार्मिक चेतना ने ही मानव में आध्यात्मिक जीवन की ज्योति जगाई और इसीलिए मनुष्य इस तथ्य का पूर्णतः बोध करने लगा कि हम केवल रोटी पानी से ही जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य की एक भूख और अतृप्त प्यास उच्चतर जीवन को जीने के लिए भी होती है। वह केवल भौतिक वस्तुओं से ही संतुष्ट नहीं होती, कोई एक ऐसी आंतरिक शक्ति भी मानव जीवन में अंतर्निहित है जिसके साक्षात्कार के लिए मनुष्य के भीतर छटपटाहट है। इसी से सिद्ध होता है कि धर्म आत्मिक जीवन से संबद्ध है, न कि जैविक या भौतिक जीवन से। धार्मिक जीवन जीना ही बहुत बड़े मूल्य की प्राप्ति है। अगला शीर्षक है तीसरा, धार्मिक चेतना का आधार जैविक प्रेरणाएं ही नहीं बल्कि अतिमानवीय तथा पराशक्ति में विश्वास है। धर्म को केवल जैविक प्रेरणा का ही प्रतिफल इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि धर्म तथा मानव की अनेक जैविक आवश्यकताओं से संबंधित क्रिया व्यापारों में बड़ा अंतर है। धर्म में स्पष्टतः पराशक्ति की अपेक्षा की जाती है। मनुष्य जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति जहां अन्य साधनों से करता है, वहां धर्म की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शक्ति विशेष की सहायता चाहता है। वह अतिंद्रिय शक्ति या ईश्वर के सहारे उच्चतर जीवन में पहुंचकर संतोष एवं शांति चाहता है। इस तथ्य को मनोवैज्ञानिक ल्यूबा ने भी स्वीकार किया है। उनका कहना है कि अतिंद्रिय शक्ति पर निर्भर होने की भावना ही धर्म को मानव की अन्य जैविक क्रियाओं से अलग करती है। पराशक्ति पर निर्भरता की भावना जैविक नहीं आत्मिक ही ज्ञात होती है। पृष्ठ संख्या 67, जीने की इच्छा का प्रकटन व्यक्तिगत रूप में ही नहीं बल्कि समस्त मानव वर्ग के लिए हुआ और इस इच्छा को मानव ने जैविक आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं रखा, वरन पराशक्ति में विश्वास करके उच्चतर या आध्यात्मिक जीवन तक विस्तृत किया। इसी को धर्म का रूप दिया। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि धर्म केवल जैविक है? अगला शीर्षक है चौथा, साधन और साध्य के बीच कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। यह आक्षेप किया जाता है कि आदिम मानव तो धर्म का उपयोग अपनी जैविक आवश्यकताओं यथा जीवन संघर्ष में विजय पाने या समृद्धि प्राप्त करने के लिए करता था। इसलिए धर्म केवल साधन मात्र था, न कि साध्य। वास्तव में यह आक्षेप निराधार प्रतीत होता है कि क्योंकि साधन और साध्य के बीच कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, जिसको हम प्रारंभ में साधन के रूप में ग्रहण करते हैं, वही आगे चलकर साध्य के रूप में हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में देखने को मिलते हैं। यदि आदिम धर्म को ही देखें तो हमें पता चल जाएगा कि जिन सत्य एवं सुंदर से संबंधित मूल्यों का उपयोग आदिम मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था, वे आगे चलकर स्वयं में मूल्य हो गए। विकसित और उच्च धर्मों में साधक पूजा, भक्ति, प्रार्थना आदि क्रियाओं को साधन के रूप में ही प्रयुक्त करता है। ये सभी क्रियाएं निसंदेह ईश्वर प्रेम प्राप्त करने के लिए ही की जाती हैं, परंतु अंत में ईश्वर भक्ति ही साधक का साध्य बन जाता है। साधक अपनी इच्छाओं को महत की इच्छा में विलीन कर देता है। उच्च कोट की रहस्यवादियों के जीवन में भक्ति और ईश्वरी इच्छा ही साध्य के रूप में मिलती है। क्राइस्ट कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। श्री रामकृष्ण के शब्दों में, माँ मेरा ज्ञान ले लो, अज्ञान ले लो, भला ले लो, बुरा ले लो, श्रद्धा भक्ति दो। अतः धर्म स्वयं में साध्य है। ऐसी धार्मिक चेतना का आधार जैविक है, यह कैसे कहा जा सकता है? अगला शीर्षक है पांचवा, मानव जीवन की पिपासा धर्म। मानव समाज में धर्म की उत्पत्ति जीवन बोध की भावना से हुई है। धर्म द्वारा मानव व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बोध करना चाहता है। कुछ लोग धर्म को केवल व्यक्तिगत जीवन तक मानते हैं, परंतु इस अर्थ में धर्म से जीवन बोध की पूर्णता की कामना फलीभूत नहीं होती। व्यक्ति समाज से भिन्न है। यदि दुखाइयम यह कहते हैं कि धर्म सामाजिक व्यवहार है, तो कुछ सीमा तक ठीक ही, परंतु धर्म को केवल इस अर्थ में लेना कि धर्म वह साधन है जिसके द्वारा समाज व्यक्ति को नियंत्रण में रखता है, ठीक नहीं है। सच तो यह है कि धर्म समाज की अपेक्षा व्यक्ति को सशक्त करता है, जिससे वह समाज की गतिविधियों का नियंत्रण करता है, और इसी से धर्म की प्रगति भी संभव है। व्यक्ति और समाज दोनों धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म इन दोनों की प्रगति में सहायक होता है। समाज ही वह स्थल है जहां मानवीय मूल्यों का संरक्षण रीति रिवाज, परंपरा, संस्था तथा जात के रूप में होता है। फिर समाज में ऐसा व्यक्ति भी निकलता है जो समाज की रूढ़िवादिता, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और निकृष्ट परंपराओं का विरोध करके उन्मूलन करता है। उस व्यक्ति को धर्म से इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि समाज में वह अवतार, पैगंबर या देवदूत के रूप में समझा जाने लगता है। वह महान दैवी गुणों से युक्त होता है। समाज उसके गुणों से लाभान्वित होता है। यह भी सच है कि ऐसा व्यक्ति समाज में ही उत्पन्न होता है। यह कथन सत्य है कि आत्म त्याग से ही आत्म प्राप्ति होती है, और यह व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए चरितार्थ होता है। धर्म द्वारा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक संरक्षण संभव है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की समष्टि ही पूर्ण जीवन है और इस पूर्णता की प्राप्ति धर्म से ही संभव है। धर्म की कामना इसी जीवन पूर्णता की पिपासा की तृप्ति के लिए ही है। धर्म केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है। पृष्ठ संख्या 68। अब अगला शीर्षक है बिंदु स, धर्म की उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक तत्व। धर्म की उत्पत्ति किन किन मनोवैज्ञानिक तत्वों के कारण हुई, इसको निर्धारित करने के लिए यह भी जानना होगा कि मानव प्रकृति कितने रूपों में विभाजित है। हम यह देख चुके हैं कि धार्मिक व्यवहारों के लिए अलग से कोई मानसिक शक्ति नहीं है, जिसके कारण मनुष्य धार्मिक क्रियाएं करता है। मनुष्य जिन मानसिक तत्वों द्वारा जीवन के अन्य व्यवहारों का संपादन करता है, उन्हीं तत्वों द्वारा वह धार्मिक व्यवहार भी करता है। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे तीन तत्वों का विवेचन किया है, ज्ञान या बुद्धि, भाव एवं क्रिया। मानव चेतना का गठन इन्हीं तत्वों से हुआ है। ल्यूबा के अनुसार मानव चेतना न केवल ज्ञान अथवा भाव और क्रिया द्वारा ही सक्रिय होती है, बल्कि तीनों का समन्वित योग आवश्यक होता है। यद्यपि यह सच है कि इन तत्वों के संयुक्त होने से ही मानव अनुभव की उत्पत्ति होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तीनों ही समान रूप से प्रमुख हैं। क्या इन तीनों तत्वों में से कोई एक प्रमुख कहा जा सकता है? क्या मानव विकास में किसी एक तत्व का दूसरे की अपेक्षा महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है? अगला शीर्षक है ज्ञान ही प्रमुख है। प्राचीन मत के अनुसार बुद्धि अथवा ज्ञान को ही गौरवपूर्ण स्थान मिलता है। इसीलिए यह उक्ति मिलती है कि मानव बौद्धिक प्राणी है। यही नहीं, बुद्धिवादियों के अनुसार भी ज्ञान अथवा बुद्धि को ही अधिक महत्व दिया गया है। बुद्धिवादी आदिम मानव में भी बौद्धिकता की प्रचुरता पाते हैं। अगला शीर्षक है आलोचना। पहला बिंदु है उपयुक्त दृष्टिकोण मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आदिम मानव के विषय में जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं उनके निष्कर्षों से बुद्धिवादियों का तर्क निरस्त हो जाता है। दूसरा है निसंदेह वर्तमान युग बुद्धि के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध करता है कि वर्तमान सभ्यता में पला हुआ अति शिक्षित और सुसंस्कृत मानव भी बुद्धि की अपेक्षा अबौद्धिक उत्तेजनाओं, अचेतन वृत्तियों एवं भावना ग्रंथियों से अधिक निर्देशित एवं शासित होता है। अतः ज्ञान अथवा बुद्धि को मानव चेतना का मौलिक एवं प्रमुख अंग नहीं माना जा सकता। अगला शीर्षक है इच्छा ही प्रमुख है। कुछ विचारकों ने इच्छा शक्ति को मानव चेतना का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। कांट ने सैद्धांतिक तर्क की अपेक्षा व्यवहारिक तर्क पर बल दिया है। इस रूप में कांट ने नैतिकता की इच्छा शक्ति को मानव चेतना में प्रमुख स्थान दिया। कांट के पश्चात फिक्टे एवं शोपेनहावर आदि दार्शनिकों और उंट तथा हाफटिंग आदि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी इच्छा या संकल्प शक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया। फलवादी दार्शनिकों ने इसे पर्याप्त महत्व प्रदान किया है। ल्यूबा ने इस सिद्धांत पर अधिक बल दिया और इच्छा शक्ति को मौलिक माना। उनके अनुसार इच्छा शक्ति से ही जीवन गतिशील एवं दिशोन्मुख होता है। यही नहीं, इच्छा शक्ति का अस्तित्व निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसका अस्तित्व बुद्धि के अभाव में भी संभव है, परंतु इच्छा शक्ति के अभाव में बुद्धि असंभव है। उनका कहना है कि उद्देश्य, अभिप्राय एवं इच्छा के अभाव में हम विचार की क्रिया कर ही नहीं सकते। हम विचार इसलिए करते हैं कि हम इच्छा करते हैं। विचार इच्छा शक्ति के अस्त्र के रूप में है। विचार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पृष्ठ संख्या 69, शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है ल्यूबा के कथन की आलोचना करते हुए डीएम एडवर्ड ने यह ठीक ही तर्क प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार जीवन को गतिशील और दिशोन्मुख करने के लिए विचार इच्छण शक्ति पर निर्भर है, उसी प्रकार इच्छण शक्ति भी किसी सीमा तक विचार पर निर्भर है। बिंदु दूसरा है, जिस प्रकार ल्यूबा शुद्ध विचार या बुद्धि का स्वतंत्र अस्तित्व इच्छा शक्ति के अभाव में स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार विचार या बुद्धि के अभाव में शुद्ध संकल्प का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि हम किसी विषय की इच्छा करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उस विषय का हमें कुछ ज्ञान भी हो। बिना ज्ञान के इच्छा नहीं हो सकती। तीसरा है, विचार की अपेक्षा इच्छा शक्ति मानवीय विकास के लिए आदिम प्रमुख और रचनात्मक तत्व है। यह भी निश्चित है कि मनुष्य के अंदर सर्वप्रथम जीने की इच्छा हुई होगी। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान के अभाव में इच्छा व्यर्थ होगी। अब अगला शीर्षक है, भाव ही प्रमुख है। इस प्रकार ज्ञान और इच्छा की अपेक्षा भाव को ही प्रथम स्थान मिलना चाहिए। भावना मानव जीवन का सर्वस्व है। इतना निश्चित है कि मानव विकास की प्रथमा अवस्था में भाव और इच्छा के बीच अस्पष्ट अंतर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आदिम काल में मनुष्य वासनात्मक प्रवृत्तियों से अधिक परिचालित होता रहा। ऐसी अवस्था में व्यवहारिक रूप में इच्छा और भाव में यदि विशेष अंतर नहीं दृष्टिगोचर हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। विचार के क्षेत्र में तो भाव और इच्छा में पर्याप्त अंतर ज्ञात होता है। भाव में निष्क्रियता रहती है, परंतु इच्छा में सक्रियता स्पष्ट रूप से देखने में आती है। यह तो ज्ञात ही है कि मानव व्यक्तित्व में भावना आभ्यांतरिक रूप से क्रियाशील रहती है। भावना से ही मानव ग्रहणशील हो सकता है। सुख दुख आदि भावों को मनुष्य आत्मसात करता है। उसकी ग्रहणशीलता इन्हीं भावों से प्रकट होती है और वह अपने व्यक्तित्व का परिचय इन्हीं से प्राप्त करता है। यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार के लिए यही मूल तत्व है। धर्म के क्षेत्र में भावना का मूल्यांकन करने वालों में स्लायर माखर एवं लातजे हैं।